सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं स्टैगफ्लेशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं मुद्रा स्फीत जनित मंदी, इस पर कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। रेडियो न्यूज़ में आपने सुना होगा एक राष्ट्र एक कार्ड योजना के बारे में। बहुत समय से इस पर बात चल रही थी, इसकी शुरुआत भी कर दी गई, तो ये राज्यों का दायित्व था कि वो अपने यहाँ इसे लागू करें। यह योजना है एक राष्ट्र एक कार्ड योजना। कल्पना करके देखिए कि छत्तीसगढ़ का एक मजदूर है, वो बकायदे मजदूरी करने के लिए पंजाब चला जाता है। तो जब वो छत्तीसगढ़ में था तब तो उसे उसके पास राशन कार्ड था और उसके सारे बेनिफिट्स उसको मिलते थे, लेकिन जब वो पंजाब चला गया तो उसको मिलना बंद हो गया। पंजाब सरकार से उसे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हमारे यहाँ होता है, ऐसा नहीं है कि थोड़े मोड़े लोग ही जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग विस्थापित होते हैं एक राज्य से दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में। तो इनकी समस्या को सुलझाने के लिए शुरुआत की गई थी एक राष्ट्र एक कार्ड योजना, यानी कि आपका एक कार्ड बन गया है, अब आप पूरे देश में कहीं भी चले जाइए, उस कार्ड के आधार पर जो भी लाभ मिलने हैं आपको वहां मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे खुशी की बात यह है कि कल जो रेडियो न्यूज में खबर थी कि अब पूरे देश में यह योजना लागू हो चुकी, यानी कि सभी राज्यों ने इसे अपने यहां लागू कर दिया है और असम राज्य कल इसे लागू करने वाला अंतिम स्टेट था। तो एक बहुत अच्छी खबर है। और बकायदे एक मेरा राशन नाम का मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है और इसके जरिए बकायदे उन्हें सारी खबरें मिलती रहेंगी। तो मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है आपके आंसर राइटिंग के लिए। प्री में तो खैर इसके पूछे जाने की संभावना नहीं है। दोस्तों, न्यूज़ में ही आपने सुना होगा, रेडियो न्यूज़ में ही, कि ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन चीन में होने जा रहा है। ब्रिक राष्ट्र शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन का मतलब है कि टॉप जो कंट्रीज के हेड होते हैं वो इस सम्मेलन में भाग लेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, जो ब्रिक्स संगठन है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। इसके बारे में मैं अभी कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, अभी देखिए कि सम्मेलन में बातचीत होगी उससे क्या निष्कर्ष निकलते हैं। लेकिन फिलहाल बस आपको सतर्क करने के लिए मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि इस सम्मेलन से संबंधित जो खबरें आप सुने पढ़ें उन्हें ध्यान से करें और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगें उन्हें नोट भी कर लें, समझने की कोशिश करें। जब भी सम्मेलन शुरू होंगे और उस पर बातचीत होगी, जब भी कुछ ऐसी खबरों की जरूरत महसूस हुई मुझे कि आपको जाननी चाहिए, तो डेफिनेटली हम लोग डेली ऑडियो लेक्चर में तो उन्हें शामिल करेंगे ही, लेकिन इस संगठन के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अखबारों में आज आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके जो अलायंस हैं उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और वो है झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू। ये राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होंगी और इनके विरोध में जो विपक्ष ने अपना उम्मीदवार जो तय किया है वो है यशवंत सिन्हा जी, जो एक आईएएस ऑफिसर रहे, बाद में हमारे वित्त मंत्री वगैरह भी रहे। तो ये दोनों में आपस में मुकाबला होगा। देखिए, जहां तक राष्ट्रपति के चुनाव की बात होती है, सामान्यतया परिणाम पहले से मालूम होते हैं, क्योंकि जो मतदान होता है वो पूरी तरह से पार्टी के आधार पर होता है। किस मतदाता को कितने वोट देने को मिलेंगे, आप जानते हैं कि संसद के जो दोनों सदन हैं उनके जो सदस्य हैं वो मतदान करेंगे, विधानमंडलों के विधानसभा के सदस्य मतदान करेंगे। इसका जो फार्मूला है उसको हम उस समय जानेंगे जब ये घटना घट रही होगी, क्योंकि उस समय समझना बहुत आसान होगा। लेकिन फिलहाल बस ये बताना चाहूँगा कि चूंकि पार्टी लाइन के आधार पर मतदान होते हैं, तो उसको देखते हुए यह निश्चित मालूम हो रहा है कि जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो हमारे देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। तो बस एक सामान्य सी सूचना मुझे आप सबको देनी थी। दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड का मैं एक एडिटोरियल कमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, बंद हो सिंगल यूज प्लास्टिक। ये एक अच्छी खबर है और खबर इस मायने में है कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने संबंधी जो कानून लाया गया था वह लागू हो जाएगा 1 जुलाई से। हालांकि कुछ ऐसे आप कह लीजिए कंपनियां हैं जो अभी कुछ समय बढ़ाने की मांग कर रही हैं और उसमें खासकर पेय पदार्थों के जो उत्पादक होते हैं ना, जो आप जो स्ट्रा होता है जिससे आप पेय पदार्थ पीते हैं पाइप जैसा, उनकी मांग है कि थोड़ा सा समय और दिया जाए, लेकिन लगता नहीं है कि उन्हें समय मिल पाएगा क्योंकि उन्हें ऑलरेडी बहुत समय दिया जा चुका है। और जो दूसरे देश हैं बकायदे वहाँ कागज के स्ट्रा काम कर रहे हैं, पॉलीलैक्टिक एसिड से बने हुए, मक्के के स्टार्च से बने हुए स्ट्रा कई देशों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो भारत में भी किए जा सकते हैं, इनका उत्पादन भी किया जा सकता है। और अगर अभी मतलब आप कह लीजिए कि उतना उत्पादन नहीं हो सकता तो उसका आयात भी किया जा सकता है। ये जो एडिटोरियल कमेंट है इसमें खासकर ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मतलब ये है कि आप एक बार यूज़ करके दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, फिर उसे फेंक देते हैं और उसे नष्ट होने में बहुत समय लगता है, अलग अलग तरह की परेशानियां पैदा होती हैं, जो इस एडिटोरियल में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि यदि आपके पास इसके नोट्स नहीं हो या इसकी जानकारी नहीं हो तो इससे आप एक अच्छा खासा छोटा सा नोट तैयार कर सकते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होगा। हाँ, कानून के बारे में इसमें कोई जानकारी नहीं है और आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह से बिजनेस स्टैंडर्ड का ये एक मैं बहुत ही खूबसूरत आप सबको आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूँ, IPEF के महत्व से लाभान्वित हो भारत, श्याम सरीन जी का लिखा हुआ ये लेख है जो हमारे पूर्व विदेश सचिव रहे हैं। श्याम सरीन जी बहुत अच्छा लिखते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि किस तरीके से यह हिंद प्रशांत आर्थिक जो ढांचा है उस संगठन है और क्वाड ने इसे तैयार किया है और जो हमारे आसियान के देश हैं इसके मेंबर हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट संगठन अभी तैयार हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट है। तो बहुत अच्छे तरीके से ये आर्टिकल लिखा गया है और मैं समझता हूं कि जो रियल जो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है मेंस में कि भारत कैसे लाभान्वित हो सकता है, इससे कैसे लाभ उठा सकता है, उसको बेस बना करके आर्टिकल लिखा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इससे आप एक छोटा सा नोट जरूर तैयार कर लें। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर और वो है स्टैगफ्लेशन। आपके दिमाग में यह बात आया होगा कि स्टैगफ्लेशन की बात क्यों की जा रही है, अभी तो कुछ ऐसी बात आई नहीं है और उसे मुख्य विषय के तहत लिया जा रहा है। या दोस्तों, जानबूझ करके मैंने इसे लिया है क्योंकि आज का जो दैनिक भास्कर का एडिटोरियल कमेंट है जो मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूँ, उस एडिटोरियल कमेंट में इस बात की आशंका व्यक्त की गई है कि भारत आगे चल करके स्टैगफ्लेशन के चक्र में फंस सकता है। अब आप देखिए कि स्टैगफ्लेशन शब्द उपयोग में आया है और फंस सकता है और ये बहुत बुरी स्थिति होती है, तो मुझे लगा कि नहीं, आपको जानना चाहिए कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है। हालांकि अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आप इसके बारे में जानते होंगे, कोई बहुत कठिन टॉपिक नहीं है। यहां तक कि अगर आपने इन्फ्लेशन टॉपिक की तैयारी अच्छे से कर ली है, ठीक ठाक कर ली, तब भी आप स्टैगफ्लेशन को आप समझ सकते हैं। लेकिन आइए थोड़ी सी जानकारी मैं यहां आपको दे देता हूं। देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है, स्टैग और फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब है कि जो मनी है उसमें बहुत ज्यादा फैलाव हो रहा है, मुद्रास्फीति। अगर मार्केट में धन ज्यादा आ जाए तो महंगाई बढ़ेगी, ये बिल्कुल एक दूसरे का विपरीत संबंध है। अगर मुद्रा ज्यादा है तो महंगाई बढ़ेगी क्योंकि खरीदने वाले ज्यादा लोग हैं, पैसा देने को तैयार है ना, तो बढ़ेगी। तो इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन के बारे में तभी खूब बातें हो रही हैं, आप अच्छे से जानते हैं। इन्फ्लेशन, इसमें दो शब्द है, स्टैग फ्लेशन। तो फ्लेशन का मतलब है कि मुद्रा स्फीति तो होगी ही होगी और ज्यादा होगी, मतलब महंगाई और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। फिर दिया हुआ है स्टैग, पहले दिया हुआ शब्द स्टैग, तो स्टैग का क्या मतलब है, स्टैग का मतलब है जैसे देखिए कि रुक जाना, एक प्रकार से रुक जाना, बंद सा हो जाना, तो स्टैगनेशन इन इकोनॉमिक आउटपुट, इसका मतलब है स्टैगनेशन इन इकोनॉमिक आउटपुट, यानी कि जो हमारी आर्थिक व्यवस्था में जो उत्पादन होना चाहिए उसमें स्टैगनेशन आ जाएगा, उसमें रुकावट आ जाएगी। तो ऐसा कैसे होगा इसको समझना है, जब दो घटनाएं एक साथ हों, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन है, दूसरा स्टैगनेशन इन इकोनॉमिक आउटपुट है, उत्पादन में गिरावट हो रही है, रुक गई है, रुक गया है उत्पादन। जब दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हों तो इसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। कल्पना करके देखिए कि जब ऐसी स्थिति होगी स्टैगफ्लेशन का तो एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति होगी, आप अनुमान लगाइए। देखिए अर्थशास्त्र की तैयारी थोड़ा सा आपको इस रूप में करना भी चाहिए। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आर्थिक उत्पादन रुक सा गया है, तो बेरोजगारी की स्थिति क्या होगी या रोजगार की स्थिति क्या होगी? तो बहुत आराम से आप व्यावहारिक रूप में कह सकते हैं कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बनेगी। हाई अनएम्प्लॉयमेंट कि जब उत्पादन ही नहीं हो रहा है, उत्पादन रुक गया है, तो आप रोजगार देंगे कहां से? रोजगार देने की बात तो छोड़िए, जो लोग ऑलरेडी आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आपके संस्थान में काम कर रहे हैं, चूंकि अब उत्पादन रुक सा गया है, जरूरत है नहीं, तो ऐसी स्थिति में आप उनको भी बाहर निकालेंगे कि भैया अब आपकी जरूरत नहीं है तो क्या होगा? हाई अनएम्प्लॉयमेंट। और जब हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा तो अब आप देखिए कि कैसे फिर धीरे 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 एक पूरी अर्थव्यवस्था एक विचित्र किस्म के चक्र में फंसती चली जा रही है दोस्तों। और ये जो चक्र भी है बड़ा विचित्र किस्म का चक्र होता है, जाल होता है। एक बार अगर इसमें फंस गया कोई राष्ट्र तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। 1970 के आसपास लगभग ये स्थिति आई थी। तो दोस्तों ये एक टॉपिक है, इसके बारे में मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी और तैयारी कर लेनी चाहिए। समय की सीमा को देखते हुए इसका जो बेसिक है वो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ। और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, सैकत बैनर्जी आसनसोल वेस्ट बंगाल से, सृष्टि दहाले, डॉक्टर अनुराग शुक्ला कानपुर से, और महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।